अब आगे, जब से अरमान सिंघानिया को मोहब्बत हुई थी, तब से अरमान ने काफी कम मारपीट कर दी थी। वो अब फिलहाल जल्दी ही वीर रायचंद के ठिकाने की ओर रवाना हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर आस्था कॉलेज आकर बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन आज कॉलेज में सब लोग उसे बड़े ही सम्मान की नजरों से देख रहे थे। हर कोई उसे गुड मॉर्निंग विश कर रहा था और मैडम कहकर बुला रहा था। आस्था को ये बात बहुत ज्यादा अजीब सी लग रही थी, और कमाल तो तब हो गया जब आस्था क्लासेस अटेंड करने के लिए गई। पूरी क्लास ने खड़े होकर उसका अभिवादन किया, साथ ही साथ प्रोफेसर ने भी उसे जाकर मॉर्निंग विश किया। आस्था की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, और उसे समझने में देर नहीं लगी कि उसके प्रिय पतिदेव ने पहले ही सबको बता दिया था कि ये मैडम जो कॉलेज में पढ़ने के लिए आ रही है, वो आखिरकार कौन है। आखिरकार उसे कॉलेज का नया मालिक अरमान सिंघानिया था, तो सब आस्था को बड़ी ही रिस्पेक्ट दे रहे थे। अरमान ने बड़े ही कोल्ड वॉइस में सबको समझा दिया था कि आस्था को इतनी सी भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। अगर किसी ने आस्था को परेशान करने की कोशिश की, तो अरमान सिंघानिया उसकी ज़िंदगी बद से बदतर बना देगा। अरमान सिंघानिया का रिकॉर्ड कैसा था, ये सब लोग जानते थे। अरमान सिंघानिया का हिंसक बिहेवियर पूरे शहर में प्रचलित था। आस्था को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि जो मज़ा स्टूडेंट बनकर सब लोगों के साथ क्लासेस अटेंड करने में आती थी, वो फीलिंग्स उसे अभी नहीं मिल रही थी। लेकिन यहाँ तो आस्था को बिल्कुल मालिकों वाली फीलिंग मिल रही थी। आस्था का पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। आस्था कितनी देर तक मायूसी बैठी रही, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके पति ने उसे कॉलेज जाने की परमिशन दी थी। यही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, और आस्था हर हाल में डॉक्टर बनना चाहती थी। इसलिए आस्था ने सारी चीज़ों को साइड में रखा और अच्छे से अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करने लगी। उसने डिसीजन ले लिया था कि जल्द से जल्द वो डॉक्टर बनेगी, और उसके बाद वो उस इंसान को ढूंढेगी जिस इंसान ने उसकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर दिया है। अब आस्था को सब कुछ बोरिंग तो लग रहा था, लेकिन फिलहाल उसने जल्दी ही अपना कॉलेज ख़त्म कर लिया था। और जैसे ही वो क्लास से बाहर निकली, तुरंत रौनक उससे आकर गले से लिपट गई थी, क्योंकि रौनक और आस्था दोनों ही अलग अलग क्लासेस में थीं। हालांकि अबीर सिंह राठौर जिस वक्त पढ़ाने के लिए आया था, उस वक्त उनकी क्लासेस कुछ पल के लिए एक कर दी गई थीं, लेकिन अब सब कुछ चेंज हो चुका था। अब रौनक को सामने देखकर आस्था के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। रौनक ने आकर सीधा आस्था को गले से लगाते हुए कहा, तुम जानती हो क्या क्या हुआ है? राधिका दीदी को एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिल गई है। राधिका दीदी बहुत ज्यादा खुश है, और इसीलिए उन्होंने मुझे तुम्हें भी साथ लाने के लिए कहा है। तुमने अरमान भाई से बता दिया था ना? अब जैसे ही रौनक ने चहकते हुए ये पूछा, आस्था एक्साइटेड होकर बोली, हाँ हाँ, हमने उन्हें बता दिया है, और उन्होंने हमें जाने की इजाज़त भी दे दी है। हालांकि वो मारिया जी को भी हमारे साथ भेजना चाहते थे, लेकिन उनका आज कुछ ज़रूरी काम आ गया, इसलिए वो मारिया जी को साथ लेकर गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ कुछ गार्ड्स चलेंगे। तब रौनक तबाक से बोली, अरे फिकर नॉट, तुम्हारे पति ने तुम्हें जाने की इजाज़त दे दी, यही बहुत है। अभी फ़िलहाल चलो चलते हैं, अब चलो फटाफट से चलते हैं। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम्हारे पतिदेव ने ऑलरेडी लोकेशन मुझे भेज दिया कि हम यहाँ जाकर पार्टी कर सकते हैं। और वैसे भी यार, उस दिन जो हमसे मिस्टेक हुई थी, उसके बाद तो मैं भी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ यार। बाल बाल बचे थे उस दिन, तुम्हें याद है ना? ऐसा बोलकर रौनक आस्था को उस दिन की याद दिलाने लगी थी, जिस दिन वो आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाने के लिए गई थी। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त कुछ लड़के आस्था के साथ बदतमीजी कर बैठे थे। आस्था अरमान का कंसर्न अच्छी तरह से समझ रही थी। सिर्फ आस्था ही नहीं, बल्कि हर कोई अरमान का कंसर्न अच्छी तरह से समझ रहा था। तभी आस्था ने मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लोकेशन कोई भी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो मतलब पार्टी से है ना। अब चलो, फाइनली हम लड़कियों को एक साथ कुछ पल अकेले गुजारने का मौका मिलेगा, और रश्मि दीदी को मैंने फ़ोन कर दिया है, वो सीधा लोकेशन पर पहुंच जाएंगी, और मुझे लगता है कि हमें भी अब चलना चाहिए, क्योंकि हमें किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। तब आस्था मुस्कुरा देती है, और साथ ही साथ इस बात से भी खुश हो रही थी कि अरमान उसकी कितनी ज़्यादा फिक्र कर रहा है। वो उसके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी उसका ख्याल रख रहा है, अरमान को उसकी सेफ्टी की चिंता है। तो आस्था के चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ गई थी। अरमान ने कहीं और नहीं बल्कि सुमित के होटल में ही उन्हें पार्टी करने का एडवाइस दिया था, क्योंकि अरमान नहीं चाहता था कि आस्था या रौनक या राधिका कोई भी कहीं भी बाहर ना जाए। रौनक भी अरमान को जीजू कहकर बुलाती थी, तो इसीलिए अरमान को उनकी भी फिक्र हो रही थी, और आस्था की बहन की जगह ही रौनक को देख रहा था। तो सबकी सेफ्टी का ध्यान में रखते हुए अरमान ने उन लोगों को अच्छे से पार्टी करने की इजाज़त सुमित के होटल में दी थी। इसलिए बेफिक्र होकर वो मारिया को अपने साथ लेकर चला गया था, क्योंकि सुमित के होटल में ऑलरेडी वहां पर काफ़ी सारी सिक्योरिटीज़ का अच्छे से इंतज़ाम है और सुमित को भी उसने इस बात के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। इसलिए सुमित ने उन लोगों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स भी करवाए थे और ख़ुद वहां उनके सामने ना जाने का उसने डिसीजन लिया था, क्योंकि सुमित को अभी ये नहीं पता था कि पार्टी राधिका दे रही है। राधिका की जॉब लगने की खुशी में पार्टी हो रही है। उसे तो पता था कि आस्था सुमित के होटल में आने वाली है, तो इस बात से वो खुश था। अब जल्दी ही रौनक सुमित के साथ होटल की ओर रवाना हो चुकी थी और तब तक राधिका ने रश्मि को भी लोकेशन सेंड कर दी थी और वो दोनों भी वहां पहुंच चुकी थी। आस्था और रश्मि ने फोन पर डिस्कस कर लिया था कि होटल सुमित का है, इसका जिक्र वो राधिका और रौनक से नहीं करेगी क्योंकि शायद ये राधिका को अच्छा ना लगे। वहीं दूसरी ओर एंजल ने डिम्पल के साथ पूरा शहर घुमाया और अब दोनों काफी ज्यादा थक गई थी, तब उन्होंने भी खाना खाने के लिए शहर के बेस्ट होटल में ले आती हैं। डिम्पल एंजल पर रॉब जमाने के लिए उसे लेकर गई थी ताकि वो एंजल को इस बात के बारे में एहसास करा सके कि वो कितनी महंगी जगह से खाना खिलाने के लिए लेकर आई है। वहीं दूसरी ओर प्रियंका इस वक्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ गार्डन में बैठी हुई थी और उसने उसके कंधे पर सिर रखा हुआ था और मदहोशी भरी आवाज में बोली, क्या हुआ? तुम कल सिंघानिया मेंशन गए थे ना, क्या हुआ? कुछ समझ में आया तुम्हें? कल जब आस्था ने नानी माँ के कमरे में किसी की परछाई देखी थी तो वो परछाई किसी और की नहीं बल्कि प्रियंका के बॉयफ्रेंड की थी, क्योंकि राघव आस्था को अगवा करने से पहले पूरे सिंघानिया मेंशन को देखना चाहता था कि कौन सा कमरा कहाँ है, क्योंकि आस्था को कॉलेज के आने जाने वाले रास्ते में अगवा करना नामुमकिन था, क्योंकि आस्था के साथ कितनी सारी सिक्योरिटी चला करती थी ये वो जानता था। तो इसीलिए राघव ने सबसे पहले सिंघानिया मेंशन को देखने का फैसला किया था कि आखिरकार मेंशन कैसा है, क्या मेंशन से आस्था का अपहरण करना आसान है, लेकिन मेंशन में भी काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी। लेकिन उस वक्त क्योंकि अरमान सिंघानिया 10 से 12 लोगों को काटने में बिजी था तो इसीलिए उस दिन आधे से ज्यादा लोग अरमान सिंघानिया के साथ गए थे, तो सिक्योरिटी थोड़ी कम थी और मौका देखकर राघव वहां घुस चुका था, लेकिन वक्त रहते आस्था ने उसे देख लिया और आस्था को उसने वहां देख लिया था और वो वहां से जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से वापस निकल भी गया था। ये बात उसने प्रियंका को बता दी थी। प्रियंका आग बबूला हो उठी थी क्योंकि राघव के चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी।
तभी प्रियंका के दिमाग में एक आइडिया आया और वो शातिर अंदाज में बोली, जब से आस्था की शादी हुई है तब से मैं बिल्कुल पागल सी हो गई हूँ, इसलिए ठीक से कुछ प्लान नहीं कर पा रही हूँ। मैं अब कॉलेज भी ज्वाइन करना चाहती थी लेकिन आस्था की वजह से मैंने कॉलेज भी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन लगता है मुझे अब कॉलेज ज्वाइन करना होगा। तुम फिक्र मत करो, आस्था को अगर हमारी जाने वाले रास्ते से अगवा नहीं कर सकते हैं तो आस्था को हम उसके कॉलेज से अगवा कर सकते हैं। मैं कुछ ना कुछ ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि तुम आस्था को कॉलेज के अंदर से ही अगवा कर लेते हैं, हम कोई ना कोई प्लान बना लेंगे। ये बोलकर प्रियंका कुछ सोचने लगी और राघव तिरछा मुस्कुरा दिया था। वहीं दूसरी ओर अरमान सिंघानिया जैसे ही वीर रायचंद के ठिकाने पर पहुंचा तो वो हैरान हो गया था क्योंकि वहां पर काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे। शायद कहीं ना कहीं वीर और वसुंधरा को इस बात का अंदाजा था कि अरमान शांत नहीं बैठेगा। ये प्लान उन्होंने अमरीश को बिना बताए बनाया था क्योंकि वो जानते थे कि अमरीश कितना ज्यादा कमजोर और डरपोक इंसान है। अगर अमरीश में थोड़ा बहुत भी दम होता तो आज से कई सालों पहले वो वसुंधरा यानी किसी औरत का इस्तेमाल नहीं करता अभिमान को बर्बाद करने के लिए, लेकिन उसमें सीधे सीधे सामने से कुछ भी करने की ताकत और हिम्मत दोनों ही नहीं थी। इसलिए वीर ने अपनी माँ वसुंधरा के साथ ही ये प्लान बनाया था कि सबसे पहले वो अबीर सिंह राठौड़ की जान लेंगे, क्योंकि जब से उन्हें पता चला था कि अबीर सिंह राठौड़ अरमान और आस्था का दोस्त बन चुका था तो उन्हें लगा था कि अरमान की ताकत और ज़्यादा बढ़ चुकी है और उन्हें अरमान की ताकत बढ़नी नहीं बल्कि पूरी तरह से घटानी है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अबीर को ही रास्ते से हटाने का फैसला किया था। अबीर सिंह राठौड़ के बारे में उन्हें पता चल चुका था कि अबीर सिंह राठौड़ इस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है और अरमान का इंतज़ार कर रहा था, और उस वक्त वो अपने साथ कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स लेकर भी नहीं आया था, और उसने अपने सेक्रेटरी अजीत को और कुछ आदमियों को उन लोगों की सेफ्टी में लगा रखा था जिन लोगों की अरमान ने जान ली थी। लेकिन क्योंकि अरमान वहां नहीं आया तो गुस्से में उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और वीर रायचंद ने इस बात का फ़ायदा उठाकर उसे अगवा कर लिया था। वहीं टाइगर और मारिया इतने सारे आदमियों को सामने देखकर तिरछा सा मुस्कुराए, उन्हें तो ऐसा लग रहा था मानो उन्हें आज भरपेट खाने को मिलेगा। अरमान ने अपना गॉगल्स उतारकर अपने कोट की जेब में रखा और एक नज़र टाइगर एक नज़र मारिया की ओर देखकर बोला, जाओ जाकर अपना अपना शिकार करो और तब तक मैं अपना शिकार करता हूँ। ऐसा बोलकर अरमान आगे बढ़ने लगा था। तभी कितने सारे आदमी अरमान मारिया टाइगर की तरफ बढ़ रहे थे लेकिन अरमान तक एक भी आदमी नहीं पहुंच पा रहा था। रास्ते में से कभी टाइगर कभी मारिया उनकी हड्डी पसली तोड़कर उनकी गर्दन मरोड़कर अलग कर देते थे। अब अरमान धड़ल्ले से आगे बढ़ रहा था और जल्दी ही एक लात सामने वाले दरवाजे पर मारकर जैसे ही वो अंदर गया उसने देखा कि वसुंधरा और वीर राजा की तरह कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनके ठीक सामने अबीर सिंह राठौर बेहोश पड़ा हुआ है। अबीर को वहां देखकर अरमान ने बिना किसी इमोशन के अबीर को देखा और अगले ही वीर रायचंद अरमान को अपने सामने देखकर थर थर कांपने लगा था। उसे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि अरमान इस तरह से यहाँ आ जाएगा। वहीं वसुंधरा ने जैसे ही अरमान को देखा तो उसके चेहरे से भी पसीना निकलना शुरू हो चुका था। कहा तो अरमान से अपनी जान बचाने के लिए वसुंधरा ने पागल बनने का नाटक किया था, लेकिन ये क्या, अब तो वो रंगे हाथों पकनी गई थी। वहीं वीर अरमान को देखने लगा था, लेकिन अरमान गहरी नजरों से वसुंधरा को देख रहा था और उसके चेहरे को देख रहा था, क्योंकि अरमान की आंखें बिल्कुल वसुंधरा के जैसी ही थीं। अरमान को अपने चेहरे से बेहद नफरत थी, क्योंकि अरमान का चेहरा वसुंधरा से काफी हद तक मिलता जुलता था। यही कारण था कि अरमान अपने चेहरे से बेहद नफरत किया करता था, और इसीलिए वो आस्था को बोला करता था कि उसे बेटी चाहिए, उसे बेटा नहीं चाहिए, क्योंकि अरमान अपना सीक्वल देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। तभी वसुंधरा अरमान की ओर देखकर तमतमाते हुए बोली, तुझे क्या लगा, हाँ जब मैंने तुझे इतने सालों से नहीं अपनाया तो क्या तुझे मैं अब क्या आऊंगी? तेरे आने से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, और इसीलिए मैं सिर्फ तुझसे नफरत करती हूँ, बहुत ज्यादा नफरत, और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये बोलते हुए वसुंधरा बहुत ही डेंजरस लग रही थी, मक्कारी उसके चेहरे से साफ टपक रही थी। तभी वीर चिल्लाया था, सिक्योरिटी, कहाँ मर गए सबके सब? क्योंकि वीर पहले भी सिक्योरिटी को आवाज दे चुका था, लेकिन सिक्योरिटी वाला कोई भी नहीं आया था, क्योंकि मारिया और टाइगर, उन्होंने सभी सिक्योरिटी वालों को खूब मजे लेकर खा रहे थे और एक दूसरे को टशनबाजी करते हुए दिखा दिखा कर मार रहे थे। मारिया अगर किसी की गर्दन तोड़ती तो टाइगर किसी का हाथ पांव तोड़ देता। इस तरह से दोनों में एक तरह का कॉम्पिटिशन चल रहा था कि कौन ज्यादा लोगों की जान लेता है और कितने बुरे तरीके से मारता है। दोनों बड़े ही भूखे शेरों की तरह उन पर टूट पड़े थे। अब जब वीर ने सिक्योरिटी सिक्योरिटी चिल्लाकर थक गया और एक भी आदमी वहां नहीं आया, फिर वीर को कुछ हैरानी हुई और अरमान को इतना शांत देखकर वो समझ चुका था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है।